ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरयेत्। कष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः प्रेम्णानुवृत्त्या शीलेन प्रश्रावनता सती भियारिया च भावज्ञा भर्तु सीता हरन्मनः। प्रेम्णानुवृत्त्या शीलेन प्राश्रयावनता सती भियारिया च भावज्ञा भर्तु सीता हरन्मनः। प्रेम्णानुवृत्त्या शीलेन प्राश्रयवनता सती भियारिया च भावज्ञा भर्तु सीता हरन्मनः। प्रेम्णानुवृत्त्या शीलेन प्राश्रयावनता सती भियारिया च भावज्ञा भर्तु सीता हरन्मनः। प्रेम्णानुवृत्त्या शीलेन प्राश्रयावनता सती भियारिया च भावज्ञा भर्तु सीता हरन्मनः। अपने पति के प्रति श्रद्धा और प्रेम से सेवा करने के कारण शीलेन इस प्रकार के गुच्छ चरित्र अच्छे चरित्र से प्रश्रयवनता सदैव हमेशा सदैव नम्र रहकर और अपने पति को संतुष्ट करके सती पतिव्रता भिया भयभीत रहकर रिया शर्मिली रहकर च भी भावज्ञा, अपने पति का भाव समझकर, भर्तुः अपने पति को, रामचंद्र भगवान को, सीता सीता माता, अहरत पूर्णतया वश में किया, मनः मन। भाषांतर तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमूर्ति भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। माता सीता हमेशा बहुत विनम्र, श्रद्धालु, शर्मीली और प्रतिवता होते हुए हमेशा अपने पति के भाव को समझती थी। इस तरह से अपने चरित्र के द्वारा और अपने प्रेम तथा सेवा के द्वारा उन्हें पूर्णतया भगवान के मन को आकर्षित कर लिया। तात्पर्य, जिस तरह प्रभु श्री रामचंद्र आदर्श पति थे, एक पत्नी व्रता, उसी तरह सीता माता आदर्श पत्नी थी। इस प्रकार का परिवार एक आदर्श परिवार है, उसके द्वारा पारिवारिक जीवन सुखी होता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः। जो उदाहरण महान व्यक्ति स्थापित करता है, साधारण लोग उसे पालन करते हैं। अगर राजा, नेता, ब्राह्मण, शिक्षक उस प्रकार के उदाहरण प्रस्थापित करते जो हमें वैदिक शास्त्र में मिलते हैं, तो संपूर्ण विश्व स्वर्ग बन जाएगा। वास्तव में इस भौतिक जगत में बिल्कुल नारकीय परिस्थिति नहीं रहेगी। ओम ज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकाया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे कौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पांगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। नौवें अध्याय के दसवें स्कंद का यह अंतिम श्लोक है। इस अध्याय का शीर्षक है प्रभु श्री रामचंद्र की लीला है। और यहाँ पे सीता माता के चरित्र का वर्णन हो रहा है। इसे मैंने परसों बताया था। कल सुबह हमने लक्ष्मण के चरित्र के बारे में चर्चा की, आज हम सीता माता के चरित्र के बारे में चर्चा करेंगे और शाम को हनुमान जी के चरित्र के बारे में। तो सीता माता का जन्म, ऐसे भगवान कहते हैं कि उनका जन्म जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि उनका जन्म दिव्य होता है। जिस तरह से भगवान के जो पार्षद होते हैं खास तरह से उनकी जो पटरानी होती है उनका जन्म भी दिव्य होता है। वास्तव में जो ये शक्ति तत्व है जिसमें राधा रानी, सीता माता, लक्ष्मी देवी ये सब आते हैं, ये बहुत गुह्य तत्व है। मैंने और इसको इसके बारे में सारे विश्व में बहुत से अलग अलग धर्मों में गलत फहमियाँ हैं। तो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए एक बार एक आर्टिकल लिखा था, इज गॉड मेल और फीमेल, ये क्या भगवान नर है या मादा है। इसकी पार्श्वभूमि ये थी कि आप जानते हैं कि पाश्चात्य देशों में जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, फेमिनिस्ट मूवमेंट मतलब जो स्त्रियां कहती है कि हमें हमारा अधिकार चाहिए, इतने सदियों से पुरुष हमें दमन कर रहे हैं तो हमें समान अधिकार चाहिए। तो फिर अलग अलग प्रकार के सामाजिक नियमों में उन्होंने परिवर्तन लाया है इस फेमिनिस्ट मूवमेंट में। तो फिर एक बार ये कुछ क्रिश्चियन स्त्रियों बोले कि हमें सब जगह समान अधिकार चाहिए, तो फिर जब आप बाइबल में भगवान के बारे में उल्लेख करते हैं तो भगवान को आप ही क्यों बोलते, भगवान को आपको शी बोलना चाहिए। तो भगवान का उल्लेख आप पुल्लिंग में क्यों करते, स्त्रीलिंग में क्यों नहीं करते। तो फिर अभी तो उन्हें बड़ा उस पर आंदोलन किया, और अभी किंग जेम्स बाइबल में जहां भी ही आता है ही स्लैश शी सेड ऐसे लिखा बाइबल के अनेक वर्जन है, तो एक बाइबल में चेंज हो गया है और वो दूसरे बाइबल से भी चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। और कई जगह पे तो वो ही और शी का झंझट में ना पढ़ने के काले इट कर देते हैं उसको, तो भगवान को इम्पर्सनल कर देते हैं, निर्विशेष निराकार कर देते हैं। पर वास्तव में जो वैदिक संस्कृति है उसमें ऐसे बताया गया है कि ये तत्वज्ञान है एक, इट इज अ कंप्लीट फिलॉसफी। तो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में इस पार्श्वभूमि के आधार पर एक लेख लिखा था कि इज गॉड मेल और फीमेल, ये मेरे पहले किताब में द स्पिरिचुअल साइंटिस्ट वॉल्यूम 1 में है। बिफोर वी कैन अंडरस्टैंड वेदर गॉड इज मेल और फीमेल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर नीदर मेल नॉर फीमेल। कि जब तक हम ये पहले समझेंगे कि भगवान नर है या मादा, उसके पहले हमें यह समझना है कि मैं तो न पुरुष हूँ न स्त्री हूँ, क्योंकि ये हमारे शरीर का लिंग है और ये शरीर हम वास्तव में नहीं है, हम आत्मा हैं। तो शारीरिक धारणा इतनी है, धर्म का उद्देश्य है कि हमें शारीरिक धारणा से मुक्त करना, पर ये शारीरिक धारणा से इतने आसक्त होते हैं लोग कि भगवान पे शारीरिक धारणा लाद रहे हैं कि भगवान त्रिलिंगी है या पुल्लिंगी है, इसके बारे में वाद विवाद कर रहे हैं। पर वास्तव में ये एक तरह से अगर हम समझ लेते कि जो आत्मा है न तो स्त्रीलिंगी है न पुल्लिंगी है, यह एक तरह जैसे अगर हम ये नकारात्मक विचार है, नेगेटिव एक्सेस है, फिर ये जीरो है और उसके बाद में सकारात्मक विचार है, पॉजिटिव एक्सेस है। तो जो नकारात्मक आधार है उस तरह से कि मैं पुरुष हूँ ये स्त्री है, और उसमें आकर्षण आता है, फिर उस आकर्षण से भोग होता है, फिर उसी आकर्षण से फिर बाद में रिपल्शन हो जाता है, फिर उससे झगड़े वगैरह हो जाते हैं, पर ये सब भौतिक है। तो एक स्तर है यह समझना कि ये सब शून्य है, ये सब माया है, भ्रम है। पर जो पॉजिटिव एक्सिस है, जो सकारात्मक विचार, उसमें भी यह जो जो लिंग का भेद है वह एक शुद्ध रूप में है। तो इसके बारे में उल्लेख कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चेतन चरितामृत में विस्तारित रूप से किया है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्योन्य विलासे नित्य लीला कोरी। राधा कृष्ण एक आत्मा, राधा कृष्ण कौन है, वो एक आत्मा है, दो व्यक्ति नहीं है, एक आत्मा दुई देह धरी, वो दो देह का धारण करते हैं। क्यों? अन्योन्य विलासे नित्य लीला करी, वो क्या करते हैं, विलास के लिए, लीला के लिए करे, एक आत्मा दो में परिवर्तित होते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जिस तरह से कई दूसरे संप्रदायों में कृष्ण की पूजा अकेले में होती है, पर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हम जब भी कृष्ण की पूजा करते हैं वो राधा रानी के साथ पूजा करते हैं, या कहीं जगह पर अगर द्वारका में द्वारकाधीश जी हैं तो फिर वहाँ पे उनके साथ रुक्मिणी है। हम कृष्ण की पूजा अकेले नहीं करते हैं, क्यों? भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं जिस तरह से अगर कोई सूरज है और उसके सूर्य किरण नहीं है
तो वो सूरज को कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से वे कहते हैं अगर कृष्ण है पर उनके साथ राधा नहीं है तो उस कृष्ण को कोई मतलब नहीं है। रघुनाथ दास गोस्वामी तो यहाँ तक कहते हैं कि वास्तव में हम गौड़िया वैष्णव हम तो राधा रानी की पूजा करते हैं, और क्योंकि राधा रानी कृष्ण से प्रेम करती है इसलिए हम कृष्ण की पूजा कभी कभी कर लेते हैं। तो गौड़िया वैष्णव सिद्धांत के अनुसार वास्तव में हम ये समझते हैं, भगवद्गीता के 15वें अध्याय के पहले श्लोक में बताया गया है, ऊर्ध्व मूल मध शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छन्नाम से यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित, कि एक ऐसा अव्यय वटवृक्ष है जिसके शाखाएं नीचे है और जिसका जड़ ऊपर है, और ऐसा वटवृक्ष हमें कहाँ दिखता है, एक प्रतिबिंब में। तो भगवान बता रहे हैं इस उपमा से कि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। तो अगर ये पुरुष और स्त्री का भेद भौतिक जगत में है तो ये प्रतिबिंब में है तो असलियत में भी होना चाहिए, पर असलियत में जो है वो शुद्ध भाव में है और यहाँ पे वो अशुद्ध भाव में है। तो द मेल फीमेल ड्यूअलिटी इज इटर्नल प्रिंसिपल इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड बट इट इज परवर्टेडली रिफ्लेक्टेड इन द मटेरियल वर्ल्ड। तो भगवान अपने पार्षद जो होते हैं वो अलग अलग रसों में उनकी सेवा करते हैं, उनमें से एक है माधुर्य रस। तो उसमें जो पार्षद उनकी सेवा करते हैं उनमें है राधा रानी, और फिर राधा रानी से विस्तारित अनेक गोपियां है, वास्तव में असंख्य गोपियां है। तो वही जो कृष्ण रामचंद्र भगवान के रूप में विस्तारित होते हैं उसी तरह से राधा रानी सीता देवी के रूप में विस्तारित होती है। तो बैक टू गॉडेड मैगजीन में एक आर्टिकल आया था, तो हमारे जो बैक टू गॉडेड के एडिटर हैं नागराज प्रभु, तो उनकी बहन जो थी वो ये फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लीडर थी, तो वो उनसे मिलने आई और वो बोले कि तुम ये कृष्ण की क्यों पूजा करते हो। तो उन्होंने बताया तुम भी वो उसी प्रकार के जो पुरुष डोमिनेशन करते हैं, दबाव करते हैं, शोषण करते हैं, उसी प्रकार का तुम्हारा भी धर्म है। तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं, हमारे धर्म में कृष्ण ही नहीं है, राधा रानी भी है। और फिर वास्तव में इस प्रकार की संकल्पना सिर्फ थोड़े से सूक्ष्म रूप में इसका उल्लेख दूसरे धर्म में आता है, पर वैदिक संस्कृति में विस्तारित रूप से है। तो फिर तुरंत उन्होंने पूछा तो फिर राधा रानी महान है या कृष्ण महान है। तो फिर बोले कि वास्तव में तात्विक रूप से देखा जाए, तत्व के रूप से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फिलोसॉफिकल ट्रूथ, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। भगवान भगवद्गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं कि मुझसे ऊपर और कोई नहीं है। तो तत्व के रूप से भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है, तो कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है। पर जब हम लीला की ओर से देखते हैं तो भगवान अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं, और जिन भक्तों के अधीन होते हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी। तो लीला की ओर से श्रीमती राधा रानी श्रेष्ठ है। सो वैदिक संस्कृति, वैदिक जो तत्वज्ञान है ऐसे है कि कृष्ण श्रेष्ठ है कि राधा रानी श्रेष्ठ है। सबसे पहले कृष्ण और राधा रानी एक ही है, पर तत्व रूप से राधा रानी कृष्ण श्रेष्ठ है, लीला से रूप से राधा रानी श्रेष्ठ है। सो नागराजपुर राइट्स, दिस इज माई सिस्टर हु वॉज अ फेमिनिस्ट लीडर, शी फाउंड दैट दिस वॉज अ परफेक्ट रेजोल्यूशन टू हर फेमिनिस्ट डिलेमा। मतलब एक तरह से भौतिक धारणा से एक तरह से कृष्ण श्रेष्ठ है, दूसरी तरह से राधा रानी श्रेष्ठ है। तो फिर वो अभी जप करना शुरू कर रही है और राधा रानी की पूजा करती है, कृष्ण की अभी तक पूजा नहीं करती है। सो ये जो शारीरिक संकल्पना हम जब आध्यात्मिक तत्वों पर, आध्यात्मिक युक्तियों पर लेते हैं तो काफी बार गलतफहमी हो सकती है। पर जिस तरह से हम अलग अलग संबंध होते हैं हमारे और उन संबंधों के द्वारा हम आनंद लेते हैं, शास्त्र बताते हैं कि हमारे ये संबंध प्रस्थापित करने की इच्छा कहाँ से जागृत होती है, हम भगवान के अंश हैं, तो जो इच्छा हम में है वो पुरातन रूप में और पूर्ण रूप में भगवान में, तो भगवान के असंख्य संबंध है और अलग अलग रसों में वो आदान प्रदान करते हैं। तो सब रसों में सब रस पूर्ण है, पर सब पूर्णों में भी सर्वश्रेष्ठ रस है माधुर्य रस, और इस माधुर्य रस में श्रीमती सीता देवी प्रभु श्री रामचंद्र की सेवा करती हैं। और जैसे कृष्ण का या प्रभु राम का जन्म दिव्य है, वैसे राधा रानी सीता देवी का भी जन्म दिव्य है। तो सीता देवी का जन्म जनक में, जन्म जनक में हुआ था, वहाँ पे जनक के, जनकपुरी जो मिथिला उसे कहते थे, तो मिथिला में जब उनका जन्म हुआ तो उस समय वहाँ के राजा जो थे, वास्तव में जनक ये वहाँ के सब राजाओं की उपाधि थी, तो एक जनक नहीं थे, अनेक जनक थे, इसीलिए भगवद गीता, और ये सब जनक आदर्श राजा थे, और इसीलिए भगवद गीता में तीसरे अध्याय में जब आदर्श राजा का उदाहरण देते हैं तो भगवान जनक का उदाहरण देते हैं। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः, आप कर्म के, कर्मयोग के द्वारा संसिद्धि प्राप्त करते हैं, किस तरह से, ऐसे जनक महाराज ने प्राप्त की थी। तो पहले जनक महाराज रघुवंश में ही थे, इक्ष्वाकु वंश में थे, जो बहुत पहले समय के जनक महाराज। तो एक बार वो यज्ञ कर रहे थे और तभी उसमें एक ऋषि नाराज हो गए, तो उस ऋषि ने उनको शाप दे दिया। तो वास्तव में राजा बड़े पुण्यवान थे और वो शाप गलत था, तो तभी उस शाप से उन्होंने वो शरीर त्याग दिया और फिर वो स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग से आध्यात्मिक धाम चले गए, उनका शरीर वहीं पर वहीं से रहा। तो फिर क्योंकि अगला राजा कोई नहीं था, तो इसीलिए उनके शरीर का मंथन करके अगला राजा प्रकट हुआ। तो इस राजा का नाम था मिथिजनक, और मिथ मतलब चर्निंग, मंथन करना, मंथन और मिथ, वैसे पृथु महाराज का मंथन के द्वारा जन्म हुआ था, वैसे इस जनक का भी जन्म हुआ। और फिर उसके बाद में अनेक पीढ़ियों के बाद उनमें एक राजा थे देवरथ नाम के, देवरथ, और ये देवरथ बड़े शक्तिशाली थे, और एक बार देवों और असुरों में युद्ध चल रहा था, तो ये देवरथ देवों को मदद करने के लिए चले गए, और उन्होंने देवों को मदद की और यश प्राप्त हुआ उनको। तो तभी वो देवों ने उनको एक विशाल धनुष दिया, ये वास्तव में शिवजी का धनुष था। तो ये धनुष शिवजी ने एक बार विष्णु से युद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था। तो एक बार नारद मुनि भ्रमण कर रहे थे और तभी वहां पे इंद्र शिवजी का गुणगान कर रहे थे, और इंद्र बोल रहे थे कि कैसे शिवजी के तीन आंखें और एक आंख जब खोल, तीसरी आंख जब खोल देते तो आग निकलती है, जो भी सामने है वो जल जाता है, कितने शक्तिशाली है शिवजी। तो नारद मुनि थोड़ी लीला देखना चाहते थे भगवान की, तो बोले हाँ शिवजी बड़े हैं, पर एक ब्रह्मांड में 11-11 शिव रुद्र होते हैं, पर विष्णु तो एक है, विष्णु सर्वश्रेष्ठ है। बोले नहीं, हाँ विष्णु ठीक है, पर वास्तव में शिवजी सर्वश्रेष्ठ है। तो नारद मुनि और इंद्र में बहस हो गई। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है, अगर आप ऐसे कह रहे हैं तो आपके पास क्या पुरावा है, अगर सही में ऐसा है तो कैसे हम साबित कर सकते हैं। तो इंद्र बोले कि मैं शिवजी को बोलूंगा कि आप जाके विष्णु को चुनौती दो और युद्ध करो। तो जब इंद्र कैलाश की ओर गए तो शिवजी की जो वाहन है नंदी, उन्होंने देखा कि इंद्र कुछ अभी मिस्चिफ करने आए हैं, इंद्र कुछ शरारत करने आए हैं। बोले तुम यहाँ पे क्यों आए हो, अभी तो कोई असुर नहीं है परेशान करने के लिए। बोले नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ शिवजी का दर्शन करने आया हूँ। तो नंदी बोले मैं तुम्हारे मन को समझ सकता हूँ, दर्शन नहीं करने आए, तुम शरारत करने आए हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ दर्शन करने आया, मुझे जाने दो। तो को हट कर रहे थे, जाने दिया। अब शिवजी कैलाश पे बैठ के वो जप कर रहे थे। तो फिर यहाँ पे तुम कैसे आए, बोले अभी कोई असुर तो है नहीं। बोले नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप किसी से युद्ध करो। तो किससे युद्ध करें, तो कोई असुर तो है नहीं, लेकिन वास्तव में नारद मुनि मुझे बहस हुआ था, तो मेरी ओके आप सर्वश्रेष्ठ है या विष्णु सर्वश्रेष्ठ है। तो शिवजी बोले तुम देखते हो मैं ये माला जप कर रहे हूँ, जानते किसका जप कर रहा हूँ मैं, तो मैंने सुना है कि आप राम का जप कर रहे हो, तो अगर मैं राम का जप कर रहा हूँ तो वो मेरे स्वामी है, अगर मैं उनसे सर्वश्रेष्ठ होता तो फिर वो मेरे नाम का जप करते, पर वो नहीं कर रहे, मैं जप कर रहा हूँ। बोले हाँ वो सब तो ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि आप उनसे युद्ध करो। तो बोले क्यों खामखा परेशान कर रहे हो आप, नहीं नहीं आप जरूर युद्ध करो। तो शिवजी बोले तुम्हें मनोरंजन का कोई और मार्ग नहीं मिला क्या। फिर इंद्र बोले कि मैंने अभी शिवजी को मना लिया है, फिर ब्रह्मा जी के पास गए, बोले और ब्रह्मा जी बोले कि आप विष्णु को मना लो। तो फिर ब्रह्मा जी बैठ गए क्षीर सागर पे और ध्यान करने लग गए, जब ध्यान करने लग गए तो फिर वो जो ध्यान से जो कम्युनिक संवाद था वो विष्णु के पास पहुंच गया। बोले विष्णु बोले कि ब्रह्मा जी मुझे बुला रहे हैं। पर क्यों बुला रहे, लक्ष्मी जी ने पूछा। तो फिर वो बोले कि कभी कोई असुर तो है नहीं। बोले फिर तो अगर आपको कैसे पता, मुझे पता है कौन से असुर कब जाते, मैं ही भेजता हूँ उनको। विष्णु बोले तो फिर क्यों, फिर वो क्यों आपको बुला रहे हैं ये भी आपको पता होगा। हाँ मुझे पता है। बोले वो चाहते हैं कि मैं, इंद्र चाहता है कि मैं शिव जी से युद्ध करूँ। तो लक्ष्मी की आंखें बड़े हो गई, मैं जरूर युद्ध देखना चाहती हूँ। बोले तो फिर विष्णु बोले अभी तो मुझे युद्ध करना ही पड़ेगा। फिर विष्णु आ गए और फिर इंद्र ने बोला कि एक शर्त है कि तुम तुम्हारे आध्यात्मिक जगत से कोई धनुष मत लाओ, नहीं तो फिर वन साइडेड युद्ध हो जाएगा, तो युद्ध में कोई मतलब नहीं रहेगा। तो उन्होंने बोला कि अपने जो आर्किटेक्ट थे विश्वकर्मा, विश्वकर्मा को बोला एक विशाल धनुष बनाओ। और उसी धनुष के दो प्रतिमाएं बनाए उन्होंने, एक उन्होंने शिव जी को दिया और दूसरा विष्णु को दिया। और ये धनुष ऐसा था, इतना विशाल था कि 300 लोग लगते थे उसको उठाने के लिए, और 300 लोग भी उसको उठा नहीं सकते थे। क्या करते थे, एक ऐसा बक्से में था और बक्से को पहिए, बक्से को व्हील्स थे, चक्किया थे, और उसको ढकेलने के लिए 300 लोग लगते थे। और वो विश्वकर्मा ने प्रकट किया और जैसे ही प्रकट हुआ शिव जी ने अपने दोनों हाथों से उसको उठा लिया और बड़े आश्चर्यचकित हो गए। तो इंद्र बोले देखो मैं बोला था बड़े शक्तिशाली है वो। तो फिर विष्णु ने भी उठा लिया और विष्णु ने उठा लिया। और फिर जब शिवजी और विष्णु वहाँ पे आ गए एक दूसरे के सामने, तो शिवजी ने तुरंत विष्णु को दंडवत किया और वो विष्णु के नाम का कीर्तन करने लग गए और वो नाचने लग गए, गाने लग गए। तो इंद्र बोले भूल गए आप यहाँ पे क्यों आए, आप अभी कीर्तन करने नहीं आए, यहाँ पे युद्ध करने आए आप। तो शिवजी बोले क्या नौबत है, मेरे भगवान का कीर्तन करने के जगह मुझे अभी उनसे युद्ध करना पड़ रहा है। बोले ठीक है, इंद्र की प्रसन्नता के लिए करेंगे। और फिर उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया। और विष्णु का उनका खुद का धनुष होता है शारणग, और भले ही वो कोई और धनुष भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें वो शारणग प्रकट हो जाता है। और फिर काफ़ी समय तक युद्ध चला, और चलते जा रहा था। बाद में अंत में शिवजी परास्त हो गए और शिवजी भागने लग गए वहाँ से। और भाग रहे थे तो शिवजी बोले इंद्र को, अभी देखो तुम्हारे लिए मैं युद्ध किया पर मैं परेशान हो गया हूँ। तो फिर विष्णु क्रोधित नहीं थे, विष्णु हंस रहे थे। और फिर शिवजी ने जाके विष्णु को प्रार्थना की और फिर इस तरह से अंत हो गया। फिर शिवजी ने ये जो धनुष था वो इंद्र को दिया, ये तुमने मुझे दिया था, ये तुम वापस ले लो, अभी मुझे नहीं चाहिए। तो इंद्र ने ये देवव्रत को दिया और देवव्रत की ओर से ये जनक महाराज जो कि सीता माता के पिता थे उनके पास आया था। विष्णु ने अपना जो धनुष था वो परशुराम को दिया। वास्तव में परशुराम ने पहले ही अपने खड्ग अपने एक्स से सब क्षत्रियों का 21 बार संहार कर लिया था। पर जब बाद में प्रभु श्री राम, जब तो प्रभु श्री राम ने दोनों धनुष का इस्तेमाल किया। वास्तव में बताएंगे हम कैसे हुआ। तो जब विश्वामित्र ने बुलाया उनको तो उन्होंने ताटक और बाकी सब असुरों का वध किया। विश्वामित्र बोले कि अभी हम जाएंगे मिथिला, वहां पर सीता का स्वयंवर है। तो जब सीता माता का जन्म कैसे हुआ, जब जनक महाराज यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ के लिए वो जमीन को हल रहे थे, हल से वो खेती कर रहे थे। तो उस समय जो खेती कर रहे थे, तो खेती करते समय अगर वो हल रुक गया कहीं तो वहाँ पे उनको ब्राह्मणों को दान देना होता है और फिर आगे वापस ढकेलना होता है, वापस ब्राह्मणों को दान देना होता है। तो इसे ढकेल रहे थे और एक जगह पे ढकेल रहे थे, फिर वो हल आगे हिल ही नहीं रहा था। सोचा शायद बड़ा, बहुत बड़ा विशाल कोई पत्थर है। तो उन्होंने खोला तो उन्होंने देखा कि एक बक्सा था और उसमें एक सुनहरे वर्ण की सुंदर छोटी सी बालिका थी। और फिर उन्होंने उसको अपने पुत्र के रूप में अपना लिया। और जब सीता देवी 6 साल की थी तो एक बार वो, उनकी 3 बहनें भी थी, छोटी बहनें, जनक महाराज की 3 पुत्रियाँ थी, तो वो खेल रहे थे तो उनको एक अपने बगीचे में एक फूल दिखा, तो वो फूल लेना चाहती थी। जब फूल लेना चाहती थी तो उन्होंने हाथ ऊपर किया तो वो कुछ उस पेड़ में कुछ मिस्टिक शक्ति थी, कुछ दिव्य शक्ति थी जिससे कि वो जब हाथ ऊपर करते वो पेड़ और ऊपर चढ़ जाता था, और फिर वो ऊपर और ऊपर हाथ ऊपर करते और ऊपर वो फूल और ऊपर चढ़ जाता था, और फिर उन्हें लकड़ी ली, लकड़ी से वो ऊपर करने लग गए, फिर भी और ऊपर जा रहा था, फिर और लंबी लकड़ी ली, फिर भी और ऊपर जा रहा था, तो बहुत ऊपर जा रहा था। तो उसने सोचा कि मुझे पता है कैसे इसको लाना है, और वो गए जनक महाराज जहाँ पे धनुष रखा था उसको उठा लिया, और जब वो सीता देवी की जो दासियाँ थी उन्होंने देखा कि सीता देवी का हाथ का शरीर तो ऐसे स्त्री के समान अबला जैसे था, पर आसानी से उन्हें धनुष उठा लिया है, तो वो दासियाँ बेहोश हो गई वहीं पे। और फिर एक दासी को थोड़ा होश रहा और वो दौड़ते दौड़े जनक महाराज के पास गई, अरे आपके पुत्री ने क्या किया पता है, वो शिवजी का धनुष उठा लिया है। तो जनक महाराज बोले वैद्य को बुलाओ और इसको दिखाओ।
तो फिर
सीता माता गई और वो धनुष उठा के छोटे से उनका छोटी सी 6 साल की बालिका था उठा, वो धनुष उठा कर रहे थे, तो महल में सब देख रहे थे आश्चर्यचकित हो गए, और सब दौड़ते दौड़ते आ रहे थे, और जनक महाराज बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे थे। बाद में मंत्री आया, मंत्री बोले कि मैंने मेरे आंखों से देखा है। और फिर जनक महाराज बोले अगर आप बोल रहे तो सही होगा, तो मैं आके देखता हूँ। जनक महाराज भी गए वहाँ पे देखने को, और जब वहाँ पे पहुंचे तो देखा कि बड़े आसानी से सीता देवी ने वो धनुष से उस फूल को तोड़ा, फूल लिया और वो धनुष हो जाके वापस उस बक्से में रख दिया। तो जनक महाराज ने देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए, बोले अपने ब्राह्मण से शायद किसी ब्रह्म राक्षस ने मेरे सीता के शरीर में प्रवेश कर लिया है,
और उसके कारण वो इतने शक्तिशाली हो गई है कि ये
शिवजी उठा देते, ये ब्रह्मा राक्षस शिवजी इतना शक्तिशाली होना चाहिए तो इसलिए उठा पाएगा वो। तो वास्तव में फिर उनके जो ब्राह्मण थे उसे चर्चा के रोले कि हमें लगता है कि जो आपकी जो बेटी है वो लक्ष्मी देवी है, कि उसमें लक्ष्मी देवी के जो भी लक्षण है वो सब उनमें ही है। तो फिर जनक महाराज थोड़ा विचार किया, संभव है, तो बोले अगर लक्ष्मी है, अगर वो इतनी शक्तिशाली है कि वो इस धनुष से उठा सकती है, तो बोले कि उसके पति कम से कम उसके इतने तो शक्तिशाली होने चाहिए।
तो फिर उन्हें बताया कि जब स्वयंवर होगा तो जो जो व्यक्ति राजा उसका पति बनेगा वो इस धनुष को उठा पाना चाहिए।
तो फिर इस तरह से जब उन्हें शर्त रखा तो सब मंत्री बोले कि ये तो संभव नहीं है, कोई भी उठा नहीं सकता है, कोई राजा उठा नहीं पाएगा। तो बोले तो अगर आप ऐसा कोई शर्त रखोगे तो आपकी बेटी को जिंदगी भर वो विवाह नहीं कर पाएगी। तो जनक महाराज बोले तुम चिंता मत करो, अगर लक्ष्मी आए हैं तो नारायण भी जरूर आएगी, और नारायण अपनी पत्नी को भी सन्यासिनी नहीं बनने देंगे।
तो वो जरूर आएंगे,
तो उनको पूरा विश्वास था। तो जब स्वयंवर हुआ तो अनेक राजा आए, तो एक राजा उठाने का प्रयास किया तो क्या हो गया, उसके पहले वो गिर गया, दूसरे थोड़ा सा उठाया और क्या उसका हाथ उसमें नीचे कुचल गया, और फिर 300 लोगों को लागे उसके हाथ को बचाना पड़ा बाद में, और सभी अचानक सब जगह अंधकार हो गया और एकदम रोशनी आ गई, और वहां पे रावण आ गया। रावण ने कहा कि ये तुमने शर्त रखी है, ये शिवजी का धनुष है। बोले मैंने तो शिवजी और शिवजी के सारे पर्वत कैलाश को उठाया था, शिवजी का धनुष क्या बड़ी बात है। रावण अहंकार का ऐसा स्वभाव होता है कि वी सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द रियलिटी विच इंक्रीजेज आवर ईगो। तो वास्तव में क्या हुआ था, जब रावण सारे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे थे अपना शक्ति दिखाने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि मैं शिवजी को भी दमन कर दूँ, और वो जगह कैलाश में और कैलाश पर्वत को उठा लिया, और फिर हिलाने लग गए। जब कैलाश पर्वत उठाने लग गए तो सारे शिवजी के भक्त और अनुयायी सहचर वहाँ पे विचलित हो गए, और पार्वती देवी बोले क्या हो रहा है, तो शिवजी बोले क्या हो रहा है मुझे पता है, और शिवजी ने सिर्फ अपना पैर का जो छोटी उंगली थी वो पर कैलाश पर्वत पे लगा दी, और कैलाश पर्वत लगा दी वो कैलाश पर्वत नीचे गिर गया, और रावण के सारे हाथ कुचल गए, और रावण चीखने लगा चिल्लाने लगा, पूरा शक्ति उठा रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर रावण ने देखा ऊपर और शिवजी हंस रहे थे, और फिर उसने सोचा कि भाई कुछ संभव नहीं है, तो उसने तुरंत शिवजी को प्रार्थना अर्पण की। और जो शिव रावण वास्तव में एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण का पुत्र था, वह ब्राह्मण राक्षस था, तो उसने जो प्रार्थना अर्पण की वो अभी जब शिव जी की पूजा करते हैं उसमें ये प्रार्थना आती है, रावण स्तुति बोलते हैं उसको। अगर आप काशी विश्वनाथ में जाते हैं तो शिवलिंग है, उसके ऑपोजिट में दीवार पे रावण स्तुति लिखी हुई है, बहुत प्रसिद्ध है वो थोड़े अर्पण की। तो शिव जी को आशुतोष कहते हैं, और शिव जी तुरंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने रावण को हाथ बाहर निकालने दिए और फिर उसको अनेक शक्तियां भी दे दी। पर रावण को ये याद नहीं था कि क्या, मैं उसको यही याद था कि मैंने कैलाश उठाया था, पर बाद में क्या हुआ वो उसने बताया नहीं। तो उसने बोला कि मैंने कैलाश उठाया था, तो उसमें शिवजी भी थे, उसके सारे पार्षद थे, तो ये शिवजी का धनुष क्या बड़ी बात है। तो फिर वो आया रावण और उसने दोनों हाथों से पूरा उठाने लग गया, वो सब आश्चर्यचकित हो गए। और जब शिवजी ने देखा कि रावण उठा रहा है, तो शिवजी ने सोचा मैंने तो ये धनुष मेरे प्रभु राम के लिए रखा था, ये क्यों उठा रहा है। और शिवजी उसमें प्रविष्ट हो गए, और प्रविष्ट हो गए ताड़ वापस गिर गया, तुरंत रावण वापस के हाथ उसके पूरा कुचल गए वहां पे, और चीखने लगा, चिल्लाने लग गया वो। और फिर किस तरह से रावण के हाथ छूट गए और रावण क्रोध होकर वहां से चला गया। तो सब राजा जो थे जो भी आए उनमें से कोई भी ये धनुष उठा नहीं पाए। उसके बाद में जब सब राजा असफल हो गए तो सब राजा क्रुद्ध हो गए, वो कह रहे ये जनक ने हमारी बेइज्जती करने के लिए ऐसी शर्त रखी है, तो हमें भी बेइज्जती का बदला लेंगे। और सब अपने साथ जनक महाराज पे आक्रमण कर दिया। और जनक महाराज ने देवताओं से प्रार्थना की कि आपने मुझे धनुष दिया था तो आप ही बचाओ मुझे अभी इससे। तो फिर देवताओं की शक्ति, उनको शक्ति और सेना प्रदान की, और फिर उन्होंने सब राजाओं को हरा दिया। और फिर जब प्रभु श्री रामचंद्र आए और विश्वामित्र ने उनका परिचय किया, और जनक महाराज उनको देख कर ही उनकी ओर आकर्षित हो गए, और ऊपर बालकनी में सीता माता थी, और इसके पहले जितने भी राजा आए थे सीता माता के उनकी ओर बिल्कुल आकर्षण नहीं था, लगता है बहुत गर्वित है ये। पर जब राम को देखा तो स्वाभाविक आकर्षण जागृत हो गया उनका। तो दिस इज द ओरिजिनल लव एट फर्स्ट साइट। तो उन्होंने उन्होंने सीता माता ने व्रत लिया था कि मैं केवल सिर्फ नारायण से विवाह करोगे। जैसे राम प्रभु श्री रामचंद्र को देख रहे थे तो उनको लग रहा था कि यही वो नारायण है। और फिर जो धनुष लाया गया तो प्रभु श्री रामचंद्र ने विश्वामित्र को प्रणाम किया, और फिर वो एक हाथ से धनुष उठा लिया। जब वो हाथ नीचे रखा तो सारे महल में, सारे दरबार में सन्नाटा छा गया, देखने क्या होने वाला है। जनक महाराज प्रार्थना कर रहे थे कि कोई ना कोई तो ये धनुष उठा जाए, अगर राम उठा लेगा तो कितना अच्छा हो जाएगा। और एक हाथ से आसानी से प्रभु श्री रामचंद्र ने उठा लिया, और सारे महल में सब आश्चर्यचकित हो गए। और फिर एक हाथ से उठाकर दूसरे हाथ से उन्होंने उसको झुकाने लग गए, कुछ रस्सी भी बांधने लगे, जो झुका रहे थे झुका रहे थे झुका रहे थे। और जब झुका रहे थे क्या हो गया, वो इतना झुक गया कि टाक टूट गया। और जब टूट गया तो इतनी विशाल ध्वनि आई, मान लो कोई भूकंप हो गया हो। और उस महल में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र, जनक और सीता, इन सबको छोड़कर सब बेहोश हो गए, कोई होश में ही नहीं रहे। और जब वो धनुष टूट गया तब जनक महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, बोले कि तुम जरूर सीता के योग्य वर हो। और सीता को बुलाया, सीता ने आकर उनका हार पहनाया, और इस तरह से उनका विवाह हो गया। तो अभी महत्वपूर्ण यह है कि रावण जिस धनुष को उठा नहीं पाया उस धनुष को आसानी से सीता माता ने उठा लिया था, तो फिर रावण सीता माता का अपहरण कैसे कर पाया, तो वो सीता माता का अपहरण नहीं कर पाया। जो वो लेके गए थे वो सीता नहीं थी, वो माया सीता थी। और माया सीता भी क्यों लेके गए वो केवल उनका विनाश करने के लिए। तो जब रावण हिमालय में भ्रमण कर रहा था तो वहां पे एक जगह वो देख रहा था, तो वहां पे एक देखा कि एक सुंदर स्त्री वहां पे ध्यान कर रही है, तो बड़ा और अकेली थी वो, तो लगा कि कौन है ये स्त्री। और जब उसे देखा तो उसे वो काम से विचलित हो गया, तो नीचे उतरा अपने पुष्पक से, और उसने कहा कौन हो तुम, जो भी हो मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। और उसने बोला मैं रावण हूँ, इतना शक्तिशाली हूँ ये वो। बोला कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तो वो वेदवती थी, वेदवती एक ऋषि की कन्या आती है, उसने व्रत लिया था कि मैं केवल विष्णु को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करूंगी, और इसलिए वो तपस्या कर रही थी वहां पे। तो वैद्यवती ने कहा कि विष्णु के अलावा मेरे और कोई स्वामी नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। तो यह सुनकर रावण पहले से आकर्षित था, और अपने शत्रु विष्णु का नाम सुना तो और क्रुद्ध हो गया। अब उसने वैद्यवती को पकड़ लिया, वैद्यवती के बाल पकड़ लिए। जब वैद्यवती के बाल पकड़ लिए तो वैद्यवती ने जब तपस्या की थी उसके बहुत शक्ति थी उसके पास, तो उसने अपने हाथ को तलवार के रूप में लेकर वो बाल को काट दिए। तो रावण खींच रहा था तो उसके हाथ में सिर्फ बाल आ गए और वेदवती छूट गई। और फिर वेदवती बोली कि मेरा शरीर केवल विष्णु के लिए था, और तुमने इसको स्पर्श किया है तो ये दूषित हो गया है, तो ये शरीर मैं विष्णु को अर्पित नहीं करूंगी। मैं तुमने मेरे शरीर को दूषित किया है, मेरे विष्णु की ओर जाने का पद भ्रष्ट किया है, इसलिए मैं पुनः प्रकट होगी और तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी। ऐसे बोलते हैं उन्हें वेदवती ने मंत्र बोले और वहां पर अग्नि प्रकट हो गई और वो जलकर वहां से लुप्त हो गए। तो जब लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा बनाई थी, तो जब सीता देवी लक्ष्मण रेखा से बाहर जा रही थी तो लक्ष्मण रेखा ऐसी थी कि उसमें अग्नि प्रकट हुई थी, अगर कोई उसके पार जाने का प्रयास करता तो सीता देवी देख रही थी क्या है लक्ष्मण रेखा, तो जब पार जा रही थी तब क्या हुआ, अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव की पत्नी है स्वाहा, तो वो स्वाहा आई और स्वाहा ने सीता देवी को लिया और वो अग्निदेव के महल में, अग्निदेव के राज्य में जाकर रहने लगी। और उस समय उसने वेदवती को वहां पे प्रकट किया, तो वही वेदवती जिसको जिसने व्रत लिया था कि मैं रावण के विनाश का कारण बनूंगी, वह माया सीता के रूप में दंडकारण्य में थी और उसका अपहरण किसने किया, रावण ने किया। और बाद में जब अग्नि परीक्षा हुई थी तब सीता माता अग्नि परीक्षा अग्नि में प्रवेश की, और फिर तो सीता माता जो प्रवेश की थी वो कौन थी, वो वेदवती थी। तो वेदवती अग्नि में प्रवेश हुई और फिर सीता माता वापस बाहर आ गई। तो वास्तव में सीता माता इतनी शक्तिशाली थी कि वो अपने शक्ति से ही रावण का विनाश कर सकती थी, पर क्योंकि वो प्रभु श्री राम की महिमा बताना चाहती थी तो इसलिए उन्हें ऐसे नहीं किया। तो उसके बाद में जनक महाराज ने उन्हें बताया कि आप हमेशा प्रभु श्री राम के साथ रहो और उनकी सेवा करो। फिर उनका विवाह हुआ और फिर जब वो वापस अयोध्या में आए तब बड़े आनंद से रह रहे थे, और उस समय कैकेयी ने मंथरा के उकसाने पर षड्यंत्र किया, प्रभु श्री राम को जंगल में भेजा। और जब प्रभु श्री राम को जंगल में भेजा तो उस समय सीता देवी बोले कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तो प्रभु श्री राम बोले कि तुम तो राजकन्या हो, तुम ऐशो आराम में रही हो, तुम कैसे जंगल में रह सकते हो? जंगल में शेर जानवर राक्षस होते हैं, वहाँ पे कांटे होते हैं, बिच्छू होते हैं, वो एक राजकन्या के लिए जगह नहीं है। तुम जो वनवास के का दंड जो है जो वो मुझे मिला है, तुम्हें नहीं मिला है, तुम यहीं पर रहो। सीता माता बोले कि मैं जंगल में तुम्हारे आगे जाऊंगी और जो कांटे तुम्हारे पैर में चुभेंगे वे खुद मेरे पैर में लोंगे और मैं तुम्हें उन कांटों से बचाऊंगी और मैं ज़रूर आऊँगी आपके साथ। तो फिर जब उनका दृढ़ संकल्प देखा तो फिर प्रभु श्री राम बोले ठीक है तुम आ सकती हो। तो वास्तव में सीता माता को वो तपस्या करने की कोई ज़रूरत नहीं थी एक तरह से देखा जाए, बट क्यों उन्होंने स्वीकार किया, केवल उनके कर्तव्य के कारण। और कर्तव्य से बढ़कर अगर किसी को जस्टिफिकेशन चाहिए, जस्टिफिकेशन मतलब मुझे जो करना है उसके लिए कुछ कारण ढूंढना है, तो अगर उनको जस्टिफिकेशन चाहिए तो बोल सकते थे कि पत्नी का धर्म है कि अपने पति का आदेश पालन करे, और मेरे पति का आदेश है कि मैं राज्य में ही रहूं, तो मैं मेरे पति का आदेश के कारण राज्य में रह रही हूं। तो ऐसे बोलना था तो वो जरूर बोल सकती थी। जब हम भक्ति करते हैं तो समटाइम्स हम कभी कभी हमारे भक्ति में अनुकूल परिस्थिति रहेगी और कभी कभी हमारे भक्ति में प्रतिकूल परिस्थिति रहेगी, और जब प्रतिकूल परिस्थिति होती है तब हम भक्ति बरकरार अगर रखते हैं तो उससे हम भगवान के हृदय को जीत लेते हैं। अगर प्रतिकूल परिस्थिति में अगर हम भक्ति नहीं बरकरार रखते हैं और मतलब क्या है कि हम वास्तव में भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवान से हम बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस मतलब क्या कि मैं आपकी पूजा करूंगा, मैं आपका जप करूंगा और क्या आप मेरे लिए सब कुछ ठीक ठाक रख देना। और अगर आप ठीक ठाक नहीं रख रहे भौतिक जगत में, तो फिर तुम्हारी भक्ति का क्या फायदा है? तो वास्तव में वी शुड नॉट बी फेयर वेदर डिवोटीज. फेयर वेदर डिवोटीज मतलब क्या? कि जब मौसम अच्छा है तो भक्ति करेंगे, मौसम खराब हो गया है तो भक्ति भी खराब हो जाएगी, ऐसे नहीं. तो सीता माता दिखाती है कि जो भक्ति है वो कोई भी परिस्थिति हो उसमें भक्ति बरकरार रखनी है. हम श्रील प्रभुपाद का उदाहरण देखते हैं, कितने प्रतिकूल परिस्थितियाँ थी, ये कोई भी उन्हें मदद करने को तैयार नहीं था, न तो उनके परिवार वाले, न तो उनके गुरु भाई, न ही भारत के लोग, न तो भारत के नेता है, कोई भी उन्हें मदद नहीं कर रहा था. बट कंटिन्यूड ऑन. और जब इस तरह से वो भक्ति करते रहे, फिर उसका फल क्या हुआ? उसका फल भगवान इतने प्रसन्न हो गए उनसे. ऑफकोर्स प्रभुपाद जी ये भगवान के नित्य पार्षद हैं, पर उनकी लीला से हमें दर्शा रहे कि जब जितनी ज़्यादा प्रतिकूल परिस्थितियाँ थी उसमें जितने वो भगवान से निष्ठावान रहे, उसके कारण भगवान ने उनको इतनी एम्पावरमेंट दी, इतनी शक्ति दी कि संपूर्ण विश्व के इतिहास में कोई भी वैष्णव आचार्य ने इतना प्रचार इतने लोगों को जो इतने पतित थे नहीं किया है जितने प्रभुपाद जी ने किया है. सो इसे इंग्लिश में कहते हैं, आई डोंट नो हाउ टू ट्रांसलेट दिस, ट्रिब्यूलेशन इज द प्राइज ऑफ एम्पावरमेंट. ट्रिब्यूलेशन, ट्रिब्यूलेशन मतलब जो परेशानी मुश्किलें जब हमसे आते हैं, दैट इज द प्राइज ऑफ एम्पावरमेंट. अगर हमें भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करने हैं, भगवान से शक्ति प्राप्त करनी है, तो फिर भगवान की सेवा में जितना हम तपस्या स्वीकार करते हैं उससे हमें वो शक्ति प्राप्त होती है. तो सीता माता हमें ये उदाहरण दिखाती कैसे भगवान की सेवा के सेवा हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए. फिर बाद में जब सीता माता का अपहरण हो गया, तो जब वो रावण लंका में लेके गए, तो उसने लंका का सारा ऐश्वर्य दिखाया और सारा ऐश्वर्य दिखाया और बोला कि देखो ये, देखो ये सारा ऐश्वर्य सीधा तुम्हारा होगा, ये सब सब मेरे हजारों रानियां हैं, पर उन सब से तुम प्रधान रानी बन जाओगी, तुम केवल मेरी पत्नी बनना स्वीकार करो और ये सारा ऐश्वर्य तुम्हारा है. सीता माता बोले कि मेरे स्वामी केवल प्रभु श्री राम है, उसके अलावा मैं दूसरे किसी के विचार भी नहीं कर सकती. तुम एक कायर कुत्ते के समान हो, क्योंकि जब मेरे स्वामी जो शेर के समान है जब नहीं थे, तब तुम आके मुझे छीन के ले गए. मेरे स्वामी आएंगे और तुम्हारा विनाश कर देंगे. तो रावण बहुत क्रुद्ध हो गया और रावण ने कहा कि सीता, मैं तुम्हारा भोग करके ही रहूँगा, अगर तुम स्वीकार नहीं करोगे मुझे, मैं तुम्हें एक साल का समय देता हूँ, एक साल में अगर तुम नहीं स्वीकार करोगे मुझे, तो फिर मैं मेरे कुक्स को बोलूँगा कि तुम्हें काट कर मेरे लिए लंच बना दे और मैं तुम्हें खाकर उस तरह से तुम्हारा भोग करूँगा. तुम फैसला करो कि किस तरह से तुम उससे भोगी जाना चाहती हो. और फिर उन्हें उनको अशोक वाटिका में रख दिया. और जब अशोक वाटिका में रखा था, तब उन्होंने बताया अनेक राक्षसियाँ थी वहाँ पे. जब ये सब राक्षसियाँ थी, वो सब उनको रावण ने आदेश दिया था कि तुम सीता को धमकाओ डराओ, और जब धमकाओ डराओ और जब वो थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी तो फिर उसको प्रलोभन दो, और इस तरह से धमका कर और फिर प्रलोभन देकर तुम उसको, उसका जो दृढ़ संकल्प है वो कमज़ोर करो और उसको मेरी रानी बनने के लिए बनाओ. और जब वो रह रही थी वहाँ पे, तो हमेशा ये सब राक्षसियाँ बार 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 रावण का गुणगान करती और श्री राम का निंदा करती. और ऐसी परिस्थिति की हम कल्पना कर सकते हैं थोड़ी बहुत. अब हम भक्ति करते हैं, अगर भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में अगर कोई व्यक्ति थोड़ी सी निंदा करता है तो हम क्रुद्ध हो जाते हैं, या फिर थोड़ा कोई गलत बोलता है तो हम डिस्करेज हो जाते हैं. तो कल्पना कीजिए अगर हम ऐसी परिस्थिति में हो गए जहाँ पे सब लोग हमारे आजू बाजू जो है वो हमें डिस्करेज कर रहे हैं, हमें हमारे भक्ति का जो उत्साह है वो कम करने का प्रयास कर रहे हैं, और कोई भी भक्त का संग नहीं है जो हमें उत्साह दे रहा है, तो कितना मुश्किल होगा था भक्ति करना. पर सीता देवी तो बिल्कुल टस से मस भी नहीं हुआ. उनका ऐसे रामायण में बताया गया है, मदर सीताज माइंड नेवर इवन थॉट ऑफ द ऑप्यूलेंस ऑफ लंका बिकॉज हर माइंड वॉज फिक्स्ड ऑन द ऑपुलेंस ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड. कि उन्होंने लंका के ऐशो के बारे में बिल्कुल विचार भी नहीं किया, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र के चरण कमल जो थे उस ऐश्वर्य के बारे में हमेशा चिंतन कर रही थी. तो जब हमें सत्संग नहीं होता है तब बहुत मुश्किल होते हैं भक्ति करना. तो ऐसे नहीं है कि हम चले सत्संग से दूर चले जाएंगे और देखेंगे हाँ मैं बड़ा शक्तिशाली भक्त हूँ, तो माया दिखा देगी हमें कम वो कितनी शक्तिशाली है. जहाँ तक हो सके हमें भक्तों के सत्संग में आने का प्रयास करना चाहिए. पर कभी ऐसी परिस्थिति आ भी जाए कि सत्संग न मिले, तभी कैसे भक्ति में बने रहना है उसका उदाहरण सीता माता हमें देती है. और फिर रावण ने अलग अलग प्रकार से षड्यंत्र बनाए. तो जब युद्ध शुरू होने वाला था उसके पहले उसने सोचा कि मैं एक नाटक करूँगा. तो उसने उसका एक जादूगर राक्षस था, उसका नाम था विद्युजय. और विद्युजय को उसने बोला कि तुम एक मायावी राम का रूप तैयार करो, राम का सिर बनाओ तुम और राम का धनुष बनाओ. और रावण ये राम का सिर और राम का धनुष लेकर अशोक वाटिका में चला गया. और जब अशोक वाटिका में गया तो उसने सीता के सामने वो सिर पटक दिया. देखो तुम कहती थी राम मेरा वध करेंगे, मेरे सेनापति ने रावण का वध कर दिया, क्या करोगे भी तुम. जब सीता ने वो राम का सिर देखा तो माँ बेहोश हो गई. वो जब होश में आई पुनः उन्होंने उस राम का सिर देखा और रोने लग गए. हे प्रभु राम, आप मुझे छोड़कर कैसे चले गए, मेरे जीवन का भी क्या मतलब है. रो रही थी फूट फूट कर. रावण हंसने लग गया बड़े निष्ठुर भाव से. उसने कहा सारे वानर सेना जब सेतु के ऊपर से लंका आ गए तो वो थक गए थे और सोई हुई थी. तब मेरे सैनिकों ने रात को जब सोए थे आक्रमण कर दिया, सबका वध कर दिया. और ये देखो राम का धनुष भी है, राम का धनुष भी रख गया फेंकाओं के सामने. तो राम का धनुष देखा तो फूट फूट के सीता देवी रोने लग गई. फिर रावण की ओर देखा, उन्होंने कहा रावण तुमने मेरे पति का वध किया है, मैं तुमसे एक ही युद्ध करता हूँ, मेरा भी तुम वध कर दो ताकि मेरे पति जहाँ पे गए वहाँ पे मैं चले जाऊँगी, मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है, रोते हुए बोल रही थी. तो रावण का ये तो पूरा उल्टा हो गया. वो सोचता कि सीता मुझे सबमिट करेगी, मेरे ओर आ जाए और बोले मेरा भी वध कर दो. तो रावण गुस्सा हो गया. तभी दौड़ते दौड़ते उनका एक सैनिक आया, बोला कि कुछ कान में उनके बोला. तो रावण थोड़ा मुड़ के चला गया वहाँ से. वास्तव में रावण ने पूरा नाटक किया था और प्रभु श्री राम बाहर से आक्रमण कर रहे थे. तो फिर तभी जो सीता माता इतनी हताश हो गई थी, तब वहाँ पे सारमा जो कि विभीषण की पत्नी थी वो आ गई और उन्हें आकर सीता का आलिंगन किया. उन्होंने बोला कि ये सब रावण की माया है, ये सब रावण का मोह है. अभी तुम्हें आवाज़ सुनाई दे रहा है, वो सब वानरों की विजय घोष है और वे भी आक्रमण कर रहे हैं और उनका आक्रमण इतना शक्तिशाली है, इतना भयानक है कि रावण उसके कारण तुरंत चौकन्ना होकर अपने राज्यसभा में चला गया, तुम चिंता मत करो. और जब सीता माता ने सुना और फिर विचार किया उस पर तो फिर शांत हो गए. तो माया का ऐसा स्वभाव होता है कि माया हमें एक भक्ति से तुरंत लेकर नहीं आती है. जैसे पहले सब रावण ने उनको सीता को प्रलोभन देने का प्रयास किया, जब प्रलोभन से स्वीकार नहीं किया किसी ने सीता ने तो फिर क्या करती है रावण ने कोई कुछ ऐसा माया का खेल किया, मोह किया जिससे कि सीता का सीता माता का दृढ़ संकल्प कम हो जाए, जैसे कि फिर वो उसकी ओर आ जाए. तो इसलिए माया क्रिएट्स मैनी ऑब्स्टिकल्स रियल और इमेजिनरी टू डिस्करेज इन आर डिवोशनल सर्विस. एंड डिस्करेजमेंट इज द बिगिनिंग ऑफ डिफीट इन डिवोशनल सर्विस. अगर हम हताश हो गए तो धीरे धीरे हम हार जाएंगे. तो इसलिए भक्तों का संघ होता है. तो सारमा जो थी वो एक भक्त थी, विभीषण भक्त थी, उनकी पत्नी भी भक्त थी. तो उन्होंने आकर तभी सीता माता को सांत्वना दी. तो जब भी हमें ऐसे लगता है कि हम हताश हो रहे भक्ति में, तो भक्तों के संघ में आकर हम बातचीत करेंगे, उनसे असलियत क्या है समझेंगे, तो जो भी निराशा है वो दूर चली जाएगी. उसके बाद में जब सीता माता लौट के, जब रावण का वध हुआ, सीता माता जब आ रही थी तो प्रभु श्री राम बोले कि मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता कि तुम पराए घर में रही हो. तो फिर सीता फूट फूट के रोने लगे, बोले अगर तुम मुझे ठुकराने वाले थे तो मैं ये 1 साल क्यों जी, पहले ही बता देना था तुम्हें मुझे, जब हनुमान को भेजा था तुमने तभी बता, तभी मैं मेरे शरीर को त्याग देती। लक्ष्मण तुम अग्नि जलाओ। और फिर सीता माता ने अग्नि में प्रवेश किया, और अग्नि में प्रवेश किया तो सारे वानर वहां पर रोने लग गए, पर प्रभु श्री राम बड़े गंभीर थे। और फिर उस अग्नि से अग्निदेव प्रकट हुए, और उन्होंने कहा सीता उनके साथ थे, बोली वो बोले कि सीता संपूर्ण शुद्ध है, कोई भी मन में भी उन्होंने किसी और का विचार नहीं किया है। तो प्रभु श्री राम से बोले कि वास्तव में मैं जानता हूँ कि वो कभी किसी और का विचार नहीं कर सकते हैं, पर क्योंकि दुनिया में लोग निंदा करेंगे इसीलिए सारे दुनिया को सीता के शुद्धता का सबूत देने के लिए मैंने ये अग्नि परीक्षा की थी। तो सिमिलर कभी कभी हमारे भक्ति के कारण हमारे जीवन में समस्या आती है, कुछ कुछ समस्या ऐसे आते हैं कि हमारे पूर्व कर्मों के कारण आते हैं, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे भक्ति के कारण समस्या आ रही है। हम बीमार होते हैं तो वो हमारे पूर्व कर्म के कारण आ रहे हैं, पर कभी कभी हम भक्ति करते हैं और ऐसे क्या होता है, ऐसा लगता है कि भक्ति के कारण मेरे परिवार वाले मुझे खिलाफ जा रहे हैं, भक्ति के कारण सब मेरे मित्र मुझसे दूर जा रहे हैं, भक्ति के कारण ये सब समस्या आ रही है, पर वास्तव में वो अग्नि परीक्षा है, उससे हम शुद्ध हो जाएंगे। फिर बाद में यह रामायण ऐसा प्रसिद्ध ग्रंथ है कि जो नास्तिक लोग हैं उन्हें उसके आधार पर प्रभु श्री राम की निंदा करने का बहुत प्रयास किया, रामायण का खंडन करने का प्रयास किया। तो वो कहते हैं कि बात इतना सब होने के बाद, अग्नि परीक्षा होने के बाद भी एक धोबी के आरोप से क्यों प्रभु श्री राम ने सीता को जंगल में भेज दिया, किसी को क्यों उन्हें वनवास में भेज दिया। तो वास्तव में ये जो है, हमें श्री वैष्णव आचार्यों ने रामायण पे विस्तारित रूप से उस पर टिप्पणी लिखी है, और वो कहते हैं कि सीता माता को कभी प्रभु श्री राम ने वनवास में भेजा ही नहीं, क्योंकि जब उन्होंने सीता माता को बोला कि आप जाओ जंगल में, उन्होंने लक्ष्मण के द्वारा सीता को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में लेके गए, और वाल्मीकि मुनि का आश्रम नदी के उस पार था जो कि प्रभु श्री राम के राज्य में ही था। तो प्रभु श्री राम ने सीता माता के पूरे संरक्षण का योजना बनाया, जब प्रभु श्री राम वनवास में गए थे तो जंगल में जाकर राक्षसों और जानवरों के बीच में रह रहे थे, पर उन्होंने सीता माता को उस तरह से नहीं भेजा। तो सीता माता का वनवास ये बोलना उचित ही नहीं है, श्री वैष्णवाचार्य कहते हैं कि सीता माता वॉज नेवर बैनिश्ड बाय द लॉर्ड, कभी उन्होंने नहीं किया। पर फिर भी अपने घर से बाहर उन्हें क्यों भेजा उन्हें, तो प्रभु श्री रामचंद्र है बहुत महत्वपूर्ण प्रोफाउंड टीचिंग सिखाना चाहते हैं। इससे क्या है, हम हमारे जीवन में अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं, जैसे भी हम सब साधक हैं तो हम सब जप करते हैं, साधना करते हैं, और हम में से कुछ लोग प्रचारक भी हैं तो हम प्रचार भी करते हैं, तो कुछ गृहस्थ है तो हमें गृहस्थ के कर्तव्य होते हैं। तो ये सब अलग अलग भूमिकाएं हम निभा रहे हैं, एक साधक की भूमिका है, एक गृहस्थ की, गृहिणी की या गृहस्थ की भूमिका है, एक प्रचारक की भूमिका है, कोई काउंसलर हो, एक काउंसलर की भूमिका है। तो ये सब भूमि हर एक एवरी रोल एज इट्स गोल्स, हर एक भूमिकाएं में हमें अपने अपने कर्तव्य होते हैं, और आदर्श परिस्थिति वो होती है जब सब भूमिकाओं के जो कर्तव्य है वो समान चलते हैं, पर कभी कभी देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अवर डिफरेंट रोल्स। कभी कभी जो अलग अलग भूमिकाएं हैं तो एक भूमिका का कर्तव्य दूसरे भूमिका का कर्तव्य, उसमें कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट, उसमें बात, उसमें सॉरी दरार नॉट एग्जैक्टली, उसमें वो दोनों हमसे मांग करते हैं तो फिर क्या करना है समझ में नहीं आता है, द्वंद्व होता है कभी कभी। गुड, द्वंद्व। ऐसे महानिधि महाराज बोलते हैं कि हरिनाम के प्रति 12वां अपराध है, हम 10 नाम अपराध जानते हैं और 11वां अपराध क्या है कि ध्यान पूर्वक जप न करना है। तो महादेव महाराज बोलते 12वां अपराध है कि जप करते समय मोबाइल ऑन रखना। कहते हैं अगर मैं मोबाइल हम नॉर्मल मोड में रखते हैं तो न केवल हम बाकी सब लोग भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, पर भले साइलेंट मोड में रखते हैं तो भी जब मोबाइल सामने रखते हैं तो क्या होता है, और कोई डिस्टर्ब नहीं होता है पर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो जब मैं बिल्कुल ध्यान नहीं रखता है और हम क्या करते हैं, किसका कॉल आया था, क्या कॉल हुआ, क्या विचार, क्या पूछने वाले, मैं क्या जवाब दूंगा, सारा हमारा विचार उसी में चला जाता है। तो कभी हम कहें नहीं भाई महत्वपूर्ण सेवा है, और मान लीजिए हम सुबह जप कर रहे हैं, एक ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, पर हम हमारे जीवन में इसका इसका जो एप्लीकेशन है हम सब देख सकते हैं। मान लीजिए अगर आप में से कोई प्रचारक है या कोई काउंसलर है, और आपका काउंसलर सुबह जप के समय आपको कॉल करता है, मुझे आपसे अर्जेंटली बात करनी है, तो तभी हमें क्या करना चाहिए, जब छोड़कर हमें उनसे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो ये क्या है, अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रोल्स है। आप हम साधक हैं तो हमें जब करना चाहिए, जब से ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण और चीज़ नहीं है, पर अगर हम काउंसलर है, प्रचारक है या और कोई भूमिका कर रहे हैं, तो उस भूमिका से भी उस समय हमें मांग आती है। तो जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रोल्स होता है तो वो आसान नहीं है उस समय फैसला करना कि कौन सी भूमिका को ज़्यादा महत्वपूर्ण देना चाहिए। तो आदर्श रूप से हमें हमारे साधना में व्यत्यय नहीं आने देना चाहिए, हमारे जीवन को इस तरह से बनाना चाहिए कि साधना का समय हमारे लिए एकाग्रता से हम जप कर सके। और कभी कभी इमरजेंसी आ सकती है, पर अगर इमरजेंसी रोज आ रही है मतलब फिर हम हमारे जो जीवन शैली है उचित नहीं है। तो साधना नॉर्मली ऐसी हो जाए कि दूसरा कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना आए, और जब कभी कभी डिस्ट्रैक्शन आ जाता है तो फिर उससे हम सीख कर ऐसा जो डिस्टर्बेंस भविष्य में ना आए उसके लिए क्या कर सकते हैं देखना चाहिए। क्योंकि और हमारी साधना है, ये प्रधान कर्तव्य हमारा, प्रधान कर्तव्य है हमारा, प्रधान संबंध है भगवान के साथ। ऐसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक बार उनको एक शिष्य बोला, प्रभुपाद मैं प्रचार कर रहे थे, बहुत प्रचार कर रहे थे, और फिर कुछ दूसरे शिष्यों से उनको समाचार मिला कि ये भक्त अच्छी साधना नहीं कर रहे। तो फिर उन्होंने उस भक्त ने प्रभुपाद जी को खत लिखा, और प्रभुपाद आई फील दैट आई वांट टू डिलीवर द होल वर्ल्ड बाय प्रीचिंग, मैं मेरी इच्छा मैं जैसे लगता है कि सारे विश्व का उद्धार कर दो प्रचार के द्वारा। तो प्रभुपाद जी ने जवाब दिया, इट इज़ गुड टू डिलीवर द होल वर्ल्ड बट इट इज़ बेस्ट टू डिलीवर वन सेल्फ। सारे विश्व का उद्धार करना अच्छा है, पर उससे अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है खुद का उद्धार करना। तो क्यों ऐसे बताया, क्योंकि उस समय एक रोल, अभी प्रचारक का रोल महत्वपूर्ण है, पर प्रचारक के रोल को ज़्यादा महत्व देंगे और साधक के रोल को महत्व नहीं देंगे तो फिर चलेगा नहीं। और जब कोई एयरप्लेन में जाता है, मैं जब एक बार बॉम्बे से जगन्नाथपुर एक कैंप के लिए जा रहा था, तो जो एयरप्लेन पे अनाउंसमेंट आया था, मैंने लेक्चर्स में सुना था इसके पहले, और एक्चुअली तभी देखा, वो कहते हैं कि अगर हवाई जहाज़ में कोई खतरा आ जाए तो फिर ऑक्सीजन का शॉर्टेज अगर हो जाए तो फिर आपके सीट के ऊपर से ऑक्सीजन मास्क गिरेंगे, जब ऑक्सीजन मास्क गिरेंगे तो फिर आपको वो ऑक्सीजन मास्क पहनना है, और कैसे पहनना है बता रहे थे। जो बता रहे थे तो उन्हें बताया कि खास करके आप में से कोई माता पिता है और आपके कोई बच्चे हैं तो पहले कि पहले ये मास्क आप खुद को पहनाओ और बाद में अपने बच्चों को पहनाओ। बोले क्यों, वो लगे नहीं मैं निस्वार्थ हूँ, मैं मेरे बच्चे की ज़्यादा परवाह करती हूँ मुझसे ज़्यादा। बोले ठीक है, अच्छा भाव है, पर वास्तव में वो जब ऑक्सीजन कम हो जाता है तो कुछ क्षणों में मृत्यु हो सकती है। तो अगर आप आपके पुत्र को बच्चे को अगर आप ऑक्सीजन मास्क पहनाने जाओगे तो वो उसको पहनाने के पहले ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा और वो भी नहीं बचेगा और आप भी नहीं बचेगी। बोले पहले खुद को पहनाओ और फिर अपने बच्चे को पहनाओ। सो वी शुड नॉट बी सेंटिमेंटल विथ रिस्पेक्ट टू अवर साधना, वी शुड बी स्ट्रिक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अवर साधना, कि नहीं ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। तो फिर क्या है, हजारों चीज़ें महत्वपूर्ण होती। जब माया हमें भगवान से लेके जाती है, माया डजंट टेक अस अवे इन वन स्टेप, माया टेक्स अस अवे फ्रॉम कृष्णा बाय चेंजिंग अवर प्रायोरिटीज। माया हमें ऐसे आज हम भक्त हैं और कल अभक्त बन जाएगा, ऐसे नहीं होता है। क्या करती है माया, हाँ कृष्ण महत्वपूर्ण है, कृष्ण सबसे महत्वपूर्ण है मेरे जीवन में, हाँ कृष्ण महत्वपूर्ण है पर अभी मेरा जॉब मुझसे महत्वपूर्ण है, हाँ कृष्ण महत्वपूर्ण है पर ये महत्वपूर्ण है, कृष्ण महत्वपूर्ण है पर ये महत्वपूर्ण है। और इस तरह से धीरे धीरे नंबर वन प्रायोरिटी से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहाँ चले जाते हैं भगवान प्रायोरिटी में पता नहीं चलता है हमको। हमारा मन कैसे है, ये कभी कभी आपने देखा होगा, ऐसे जादुई जो राक्षसियाँ होती, जैसे वो क्या है, एक चटाई पे बैठते हैं और चटाई पे बैठ के उड़ते हैं वो, तो वैसे ही क्या है, वो मन हमारी चटाई के समान है और वो मन हमें उस पर बिठा देता है और हम उस पर बैठ जाते हैं आराम से, तो उड़ते उड़ते कहाँ चले जाते, कहाँ चले जाते पता नहीं चलता है, और फिर दूसरे ब्रह्मांड में, दूसरे देश में, दूसरे योनि में कहाँ कहाँ जाते हैं, और वो चटाई कहाँ गिरेगी पता नहीं हमें। तो ऐसे हमारा मन क्या दूर 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 लेके जाता है। तो इसीलिए साधना शुड ऑलवेज बी आर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। तो अभी जो प्रभु श्री राम, जो रामचंद्र भगवान, जब उनके दो भूमिकाएं थे, एक भूमिका थी एक पति के रूप में उनको अपनी पत्नी का संरक्षण करना है, और दूसरी भूमिका है एक राजा जिसे आदर्श प्रस्थापित करना है अपने प्रजा के लिए। तो क्या आदर्श प्रस्थापित करना है? वास्तव में राजा वैदिक संस्कृति में बड़े ऐशो आराम में रहता था। इस प्रकार का ऐशो आराम होता था जो, इस प्रकार का ऐश्वर्य होता था जो साधारण लोगों के लिए लगभग नामुमकिन होता था। पर ऐसे ऐश्वर्य में रहते हुए भी राजा का यह कर्तव्य होता था कि जब उसका उम्र 50 हो जाएगा, वानप्रस्थ समय आ जाएगा, तो उसे घर त्याग करना चाहिए। और तो उससे आदर्श प्रस्थापित करना होता है कि कितना भी भौतिक ऐश्वर्य हो उससे उसे अनासक्त होना चाहिए। तो राजा के पास इतना ऐश्वर्य है, पर जब लोग देखते हैं कि इतना ऐश्वर्य होने के बावजूद राजा अनासक्त है, अनासक्त है, तो फिर सोचते हैं कि हमारे पास तो कुछ ज्यादा है नहीं, तो हम क्यों आ सकते हैं। तो भव बंधन से छूटने के लिए राजा को अनासक्ति का आदर्श प्रस्थापित करना बहुत महत्वपूर्ण है। और इस भौतिक जगत में घर, परिवार, पत्नी, इनसे जो आकर्षण है वो स्वाभाविक है, और अगर सब भक्त है तो वो बात अलग है, पर नहीं तो फिर वो बंधन का कारण बन सकता है। इसीलिए जब वो धोबी ने प्रभु श्री राम पे आरोप लगाया कि वो इतने पत्नी से इतने आसक्त है कि जैसी स्त्री दुखी से और के घर में रही है उसको अपने घर में रख सकता है क्योंकि वो आसक्त है, तो ऐसे नहीं था कि वो प्रभु श्री राम को अपने अहंकार पे आज पहुंची थी, ऐसे नहीं था कि वो कभी सीता के चरित्र पर शक कर रहे थे, पर उनका विचार ये था कि अगर लोग सोचेंगे कि मैं आसक्त हूँ तो फिर वो उनके लिए जस्टिफिकेशन बन जाएगा आसक्ति बनाए रखने के लिए, वो उनका कारण बन जाएगा उनकी आसक्ति बनाए रखने के लिए। तो जो हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु तो अपना प्रचार कर रहे थे और भक्तों के साथ आनंद से संकीर्तन कर रहे थे, पर चैतन्य महाप्रभु संन्यास क्यों लिया? क्योंकि जो लोग उनकी निंदा कर रहे थे तो वो अगर ये देखे कि अरे ये तो गृहस्थ है तो उनकी निंदा कर रहे हैं, पर वो सन्यासी है तो क्या वो निंदा छोड़ देंगे और उनका आदर करेंगे। तो जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने जो उनकी निंदा कर रहे थे उनके उद्धार के लिए संन्यास लिया, ठीक इसी तरह से जो उनकी निंदा कर रहे थे उनको भवबंधन से बचाने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा सीता को कि आप मेरे साथ मत रहो। तो यहाँ पे प्रभु श्री राम ने क्या किया, उनका जो पति का धर्म है, पति का रोल है, उसमें अपनी पत्नी का संरक्षण करना महत्वपूर्ण है, राजा के रोल में, राजा के भूमिका में उनको एक आदर्श प्रस्थापित करना महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने क्या किया, ये दोनों को संभालते हुए ऐसी योजना बनाई कि वो, उन्होंने सीता का संरक्षण की जिम्मेदारी त्याग नहीं दी, पर सीता को ऐसी जगह पे ले गए ऐसे ताकि वो उनकी रानी के रूप में नहीं थी पर पूरी तरह से सुरक्षित थी वाल्मीकि आश्रम में। तो इट्स अ वेरी डीप लेसन कि कैसे हमारे जीवन में भी कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे अलग अलग रोल्स में, उससे किस तरह से हमें कौन से भूमिका को ज़्यादा महत्व देना है, और ऐसे नहीं कि दूसरी भूमिका को छोड़ देना है पर परिस्थिति के अनुसार उस भूमिका को भी हमें मना करना है और उसको अदा करना है। तो यह इस उदाहरण सिखाते हैं हमें। और सीता माता इससे बहुत दुखी हो गई, पर जब लक्ष्मण छोड़ के चले गए तो वो बोले कि हे प्रभु, आप मुझे त्यागोगे या आप मुझे स्वीकारोगे, फिर भी हमेशा मैं आपके ही हूँ, आपके अलावा मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। यही भाव था श्रीमती राधा रानी का जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए, और वही भाव शिक्षाष्टकम में श्री चैतन्य महाप्रभु गाते हैं, आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् आदर्शनां मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। हे प्रभु, आप मेरा आलिंगन करो या आपके मेरे पैरों, अपने पैरों के नीचे मुझे कुचल दो, पर आपके अलावा मेरे कोई और स्वामी है ही नहीं। तो यही भाव एक भक्त का होता है कि भले ही भगवान हमें ऐश्वर्य दे या फिर गरीबी दे, भले ही हमें आदर दे अनादर दे, सुख दे या दुख दे, स्वास्थ्य दे या बीमारी दे, प्रभु भगवान के अलावा हमारे कोई और स्वामी नहीं है। बिना वेंकटेश ननाथो ननाथ, सदा वेंकटेशम स्मरामि स्मरामि, हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद। वेंकटेश सुब्रह्मण्य कहते हैं कि बिना वेंकटेशम ननाथो ननाथ, वेंकटेश सुब्रह्मण्य में कहते हैं कि प्रभु श्री वेंकटेश के अलावा मेरे कोई नाथ है ही नहीं, कि सदा वेंकटेश स्मरामि स्मरामि, हमेशा मैं भगवान का स्मरण करूँ, उनके अलावा और कोई मेरा आदर्श नहीं है। तो ये जो सीता माता का जो आदर्श भक्ति का उदाहरण है, हमारे हृदय में थोड़ी सी भी भक्ति है वह सीता माता की कृपा से ही आती है, और उनके चरित्र पर चिंतन करके हम भी उनसे प्रार्थना याचना कर सकते हैं कि आप भी हमें थोड़ी भक्ति प्रदान करें, जिससे कि हम हमारी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो भक्त का भाव है, उस वो भाव के संबंध में एक प्रार्थना के साथ हम इस प्रश्न को विराम देंगे। तो जो प्रार्थना है यह कृष्णदास कविराज गोस्वामी राधा रानी के बारे में बताते हैं, उनके गुणगान करते हुए वो बताते हैं। वास्तव में ये प्रार्थना राधा रानी जब मथुरा कृष्ण चले गए हैं तब भाव विभोर होकर बताते हैं, और यही प्रार्थना माधवेंद्रपुरी जब वो अपने अंतिम समय में होते हैं वो गाते हैं, और यही प्रार्थना वैष्णव जब अपना शरीर त्याग रहे उसे चिंतन करते हैं। तो परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज अपने अंतिम दिनों में थे, तो वे और राधानाथ स्वामी महाराज यही प्रार्थना गाकर अपना जो कृष्ण कथा का डिस्कशन करते थे। तो आप कृपया मेरे भी दोहराइए, आई दीन दयार्द्र, आई दीन दयार्द्र नाथ है, आई दीन दयार्द्र नाथ है। इसका मतलब मैं पहले मतलब बताता हूँ फिर हम गाएंगे। राधा ने कहा हे प्रभु आप दीन और दया, दीन लोगों के परम नाथ हो, दीन दयार्द्र नाथ है। मथुरा नाथ कदावलोक्य से, मथुरा नाथ कदावलोक्य से, आप तो दीनानाथ है पर आप छोड़कर भी मथुरा के नाथ बन गए। कदावलोक्य से, लो मैं मेरे आंखों से कभी आपको देख पाऊंगी। हृदयम त्वदलोक कातरम, हृदयम त्वदलोक कातरम, कि अलोक जब मैं आंखों से आपको देख नहीं पा रहा तो हृदय कातरम, मेरा हृदय कांप रहा है, रो रहा है। दैत भ्राम्यति किम करोम्यहम्, दैत भ्राम्यति किम करोम्यहम्, हे दैत बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, मैं जीऊं या मरूं, ये करूं या वो करूं, पूरी तरह से भ्रमित हो गई हूं, आप ही मुझे बचाओ। ऐ दीन दयार्द्र नाथ है, दीन दयार्द्र नाथ है, मथुरा नाथ कदावलोक्य से, मथुरा नाथ कदावलोक्य से। हृदयम त्वदलोक कातरम, हृदयम त्वदलोक कातरम, दैत भ्राम्यति किं करोम्यहम्, दैत भ्राम्यति किं करोम्यहम्। सीता माता की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्रीमती राधारानी की, श्री प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे। यस प्रभु जी,
सॉरी प्रभु जी, आपने पूछा नहीं कि प्रश्न पूछना चाहिए नहीं, मगर क्षमा करना फिर भी प्रश्न पूछ रहा हूँ। तो जैसे आपने बताया कि सीता महारानी को तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन एक कर्तव्य पालन और राम को संतुष्ट करने के लिए वो तपस्या करती हैं, तो उसी प्रकार कृष्ण भावना में इतनी तपस्या की जरूरत नहीं है, केवल मॉर्निंग प्रोग्राम, ब्रह्मचारी क्लास और सब जो भी क्लास होते हैं, लेकिन कभी कभी शारीरिक स्थिति के कारण हम तपस्या करते हैं, तो इस तपस्या के कारण हालत ये हो जाती है कि रावण ने हिमालय उठाया लेकिन धनुष नहीं उठा पाया। तो उसी प्रकार कभी कभी बाकी प्रोग्राम में सक्सेस आते हैं लेकिन साधना उसमें हम लूज पड़ जाते हैं अहंकार के कारण, क्योंकि हम तपस्या करते हैं तो इस साधना में अहंकार के कारण साधना में लूज पड़ जाते हैं। तो इस अहंकार को भक्तों के समुदाय में रहते हुए कैसे रोका जाए या कैसे इससे बचा जाए, क्योंकि जब अहंकार बढ़ता है तो वैष्णव अपराध होने लगता है और फिर उसकी खामी आ जाती है साधना के ऊपर। आपने बताया अंत में साधना बहुत महत्वपूर्ण है, तो कैसे अहंकार को रोका जाए प्रभु जी? और दूसरा प्रश्न वो उसके बाद बता दो।
अहंकार ये बहुत बड़ी बाधा है हम में और भगवान के बीच में, और यह अहंकार अलग अलग पद्धति से आ सकता है। तो जब हम भक्ति करते हैं तो वास्तव में हम इस भौतिक जगत में आए हैं भगवान की जगह लेने के लिए, खुद भोक्ता बनने के लिए। और भोक्ता हम कैसे बनते हैं कि भगवान के जो षड ऐश्वर्य है वो खुद प्राप्त करके। लोग धन के पीछे क्यों जाते हैं कि धन होगा तो फिर ऐश्वर्य होगा तो लोग मेरी ओर आकर्षित हो गए। तो जो छह ऐश्वर्य है, ये छह ऐश्वर्यों में से अगर कोई धनवान है तो धनवान होने से कोई नहीं सोचेगा कि ये बहुत आध्यात्मिक रूप से प्रगतिशील है। अगर अच्छे भक्त है थोड़ा तत्व ज्ञान जानते कि धन ये आध्यात्मिक प्रगति से उससे कोई लेना नहीं है। ठीक उसी तरह से कोई बहुत सुंदर है तो उस सौंदर्य का भी आध्यात्मिक प्रगति से कोई लेना देना नहीं है। पर ये छह ऐश्वर्यों में से दो ऐश्वर्य ऐसे है, ज्ञान और वैराग्य। ये बड़े आसानी से ऐसे समझा जाता है कि ये आध्यात्मिक प्रगति के लक्षण हैं, पर वास्तव में जरूरी नहीं है। ऐसे है कि अगर हम भक्ति करते हैं, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम चेदहेतुकतम, भागवत में पहले अध्याय के दूसरे स्कंध सातवें श्लोक में बताया गया है कि जब हम भक्ति करते हैं तो उससे ज्ञान और वैराग्य अपने आप प्रकट हो जाता है। पर ऐसे नहीं है कि ज्ञान और वैराग्य सिर्फ भक्ति से आता है, वो पूर्व कर्म से भी आ सकता है। जैसे पूर्व कर्म से कोई व्यक्ति बहुत अच्छा संगीतकार हो सकता है, कोई व्यक्ति पूर्व कर्म से बहुत अच्छा उसकी स्मरण शक्ति हो सकती है जिसे श्लोक याद कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से पूर्व कर्म से कुछ लोगों का शरीर ऐसे हो सकता है कि वो आसानी से तपस्या कर सकता है। आयुर्वेद के अनुसार कफ वात पित्त ये तीन प्रकार का शरीर होते हैं, और जो पित्त जिनका शरीर होता है उनको उपवास करना, अगर तपस्या के रूप में हम उपवास देखते हैं एक तरह तो उनको उपवास करना बड़ा मुश्किल है। पर जो कफ प्रवृत्ति के लोग हैं उनको उपवास करना काफी आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसीलिए जो तपस्या करने की शक्ति भी है वह कोई जरूरी नहीं है कि यह आध्यात्मिक शक्ति है। वैराग्य जरूरी नहीं है कि यह आध्यात्मिक प्रगति के कारण ही आया है। वैराग्य पूर्व जन्म के कर्म से भी आ सकता है। और पर क्या है, जब वैराग्य दिखता है तो लोग सोचते हैं कि इतना वैराग्य मतलब जरूर कितने प्रगतिशील भक्त है, और उससे हमारा अहंकार बढ़ जाता है। तो हमारे संप्रदाय में रघुनाथ गोस्वामी का उदाहरण है, बहुत वैराग्य था उन्हें, बट रघुनाथ महाराज एक प्रवचन बताते हैं कि हिज रिनन्सिएशन नेवर स्टोल हिज ह्यूमिलिटी, वेरी ब्यूटिफुल वे ऑफ पुटिंग इट, कि उनका वैराग्य कभी भी उनकी नम्रता नहीं चुरा पाया। तो वहां हमें सावधान रहना है, और इसीलिए हम भले तपस्या करें, हमारा जो प्रधान कर्तव्य है, हम जो भी कर रहे हैं तपस्या भी कर रहे हैं वो वैष्णव के सेवा के लिए कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कुछ प्रकार की तपस्या है, एकादशी का व्रत करना, जन्माष्टमी का व्रत करना, तो हम वैष्णव के आशीर्वाद में वैष्णव की सेवा के रूप में वो तपस्या करते हैं, न कि दुनिया को दिखाने की मैं कितना वैराग्य है। तो वो अंतरंग भाव होगा और हम वैष्णव की सेवा बरकरार रखते हैं तो फिर उस तपस्या से हमें हमारा अहंकार नहीं बढ़ेगा। वी शुड कंटिन्यू आवर ऑल आर सर्विसेज टू कृष्णा, और वो करते रहेंगे तो अहंकार नहीं बढ़ेगा। और भले ही अहंकार बढ़ भी जाएगा तो भगवान हमें दिखा देंगे ये अहंकार बढ़ रहा है, तो फिर उससे हम कम हो जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें तपस्या नहीं करनी चाहिए। अगर तपस्या की क्षमता है तो तपस्या जरूर करनी चाहिए। तो क्या होता है, यह व्यवहारिक रूप से है कि भले ही कृष्ण का स्मरण करने का मौका हमेशा होता है हमारे पास, पर अधिकांश रूप से हम स्मरण नहीं करते हैं भगवान का, पुकारते नहीं हैं भगवान को। पर अगर निर्जल एकादशी है तो हम भगवान के बारे में सोचेंगे नहीं, तो तुरंत पेट के बारे में सोचेंगे, फिर क्या होगा, तड़पेंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, तो फिर वो बाय फोर्स वी आर फोर्स टू थिंक ऑफ कृष्णा व्हेन वी डू ऑस्टेरिटी। तपस्या का फायदा क्या है कि शारीरिक स्तर पर इतनी पीड़ा होती है कि शरीर के बारे में हम सोच नहीं सकते, तो जबरदस्ती हमें भगवान के बारे में सोचना पड़ता है। ऐसे कि अगर आप राधानाथ महाराज के चरित्र के वो किताब पढ़ते हैं तो उसमें वो आई फॉरगेट हिज नेम, अयोध्या के पास एक स्वामी जी एक बाबा थे, नॉट राम सेवक, अनदर पर्सन वॉज ऑलवेज स्टैंडिंग, वो कभी बैठते ही नहीं थे, हमेशा खड़े रहते थे। उन्हें व्रत लिया था कि जिंदगी भर में खड़े रहूंगा। रात को सोते भी थे, वो कैसे सोते थे, वो एक रस्सी से खुद को लटकाते थे और सोते थे। और क्यों ओले, उसके कारण कुछ 40 साल से उन्हें अपने पैर झुकाए नहीं थे, कभी सोए नहीं थे वो, तो उसके कारण पैर इतना दर्द करते थे। बोले कि इस पैर के दर्द के कारण मुझे जबरदस्ती प्रभु श्री राम का स्मरण करना पड़ता है और उसमें बड़ा आनंद है। तो फिर दिस इज अ वेरी एक्सट्रीम वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ये बड़ा, पर इस तरह से इस प्रकार की तपस्या प्रभुपाद जी हमें नहीं बोली। हमारी तपस्या क्या है, प्रचार करना है। और खास करके तपस्या ज्यादा महत्व है, तपस्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमें प्रचार करना। प्रचार करते हैं तो क्या होता है कि उसमें इतनी सारी समस्या आ जाती है कि हम इफ वी जस्ट स्टार्ट प्रीचिंग वी विल बी टोटली हम्बल्ड। अगर प्रचार शुरू कर देंगे तो प्रचार में इतने सारे कार्य करने होते हैं, ये मैनेजमेंट करना होता है, वो करना होता है, वो करना होता है, और हम जल्दी से ये सब मैं नहीं कर सकता, भगवान आप ही करोगे तो होगा, तो नहीं तो नहीं होगा, एंड देन वी विल बिकम हम्बल। तो हमारे प्राइमरी सेवा है वैष्णव सेवा, और वैष्णव सेवा महत्वपूर्ण है प्रचार करना। तो प्रचार में हम लग जाएंगे तो प्रचार में ही तपस्या हो जाती है, लेट नाइट प्रोग्राम होते हैं, फिर सुबह भी उठना पड़ता है। सो वी डोंट हैव टू गो आउट ऑफ आवर वे टू डू ऑस्टेरिटी। एक बार एक भक्त प्रभुपाद जी एक मॉर्निंग वॉक पे आए थे विशाखापट्टनम में, तो एक भक्त दौड़ते दौड़ते उनके पीछे गए, तो वहाँ पे सब ऐसे पत्थर और कांटे थे, तो वो भक्त के पैर सब वो चुभ रहे थे और खून निकल रहा था वहाँ से। तो फिर वो दौड़ते दौड़ते प्रभुपाद जी ने देखा, ओह यू हैव नॉट वॉर्न योर, आपने अपने जूते नहीं पहने। तो ये भक्त थोड़े ज़्यादा ही भावुक थे, तो बोले प्रभुपाद जी जब मैं आपके साथ होता हूँ तो मुझे कोई दर्द नहीं लगता है। तो फिर प्रभुपाद जी बोले, फिर आप अगर गला क्यों नहीं काट देते अपना। तो फिर सब हंसने लगे, वह भक्त भी हंसने लगे। प्रभुपाद जी बोले कि इस दुनिया में पहले से ही बहुत तपस्या है, आपको आर्टिफिशियल तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। रियल तपस्या इज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, दैट इज द बिगेस्ट तपस्या। हमको प्रभुपाद जी के आदेश दिया है हमारे खुद की साधना करना और सेवा करना, प्रचार करना, और उसमें वो तपस्या आएगी, वो तपस्या हम करेंगे। प्रभुपाद जी हम देखते हैं कि जब वो अकेले थे, जब दिल्ली में प्रचार कर रहे थे, तब उनको क्या चॉइस था कि बैक टू गॉड है, उनके पास बहुत कम पैसे थे, तो बैक उनको या तो अपना नाश्ता और लंच खरीद सकते थे या वो बैक टू गॉड हेड के लिए पेपर खरीद करके बैक टू गॉड छाप कर सकते थे। तो तभी क्या किया प्रभुपाद जी ने, बैक टू गॉड छापा उन्होंने। पर जब बाद में बहुत से शिष्य थे तो उनका खुद उनके खुद के लिए एक कुक होता था, और प्रभुपाद जी बोलते ऐसा कुक करो, ऐसे मत कुक करो, ऐसे करो वैसे करो। तो फिर वो क्यों कर रहे थे, क्योंकि उस समय वो उसके द्वारा जो वैदिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है भगवान की पसंद के अलग व्यंजन कुक करना और फिर वो दूसरों को अर्पण करना, वो सिखा रहे थे, तो भगवान की सेवा के लिए ये जरूरी था। तो फिर वो उनका बेसिक अन्न भी नहीं खा रहे थे, और जब भगवान की सेवा के लिए जरूरी था तो वो बड़े बड़े व्यंजन कैसे सिखाना, कैसे करना है, कैसे सिखाना है, और वो उनको सिखा रहे थे अपने शिष्यों को, और वो व्यंजन वो खुद स्वीकार भी करते थे, क्योंकि उनके शिष्यों का भाव था कि हम प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए बना रहे हैं ये सब। सो आवर प्राइमरी फोकस शुड बी आवर सर्विस टू कृष्णा, हमारा और सेवा में ले जो भी तपस्या लगती है वो हमें करनी चाहिए। ओके थैंक यू। एनी अदर, दूसरा सवाल था आपका एक और।
हरे कृष्णा, थैंक यू ब्रोजी। मुझे मेरा दूसरा प्रश्न है कि जैसे सीता महारानी के पास, सीता माता के पास बहुत सारे ऐश्वर्य थे, वो चाहिए तो जब लंका में थी तो रावण से भोग भी या रावण से के साथ रह भी सकती थी, लेकिन उनका चिंतन था राम के बारे में। तो उसी तरह आपने बताया कि हमें बहुत महत्वपूर्ण सत्संग में रहना या सत्संग के ज़्यादा ध्यान देना। कलयुग में जब हम भक्तों के साथ रहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है भक्तों के साथ रहना, लेकिन जब भक्तों के साथ रहते तो सबसे महत्वपूर्ण तपस्या होती है कि भक्तों के साथ रहना, कि कैसे इनके साथ रहे, क्योंकि शारीरिक गतियाँ या बौद्धिक स्तर या विचारों के बहुत अलग अलग विचार होते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण तपस्या होती है भक्तों के संग में रहना। तो ये कैसे किया जाए कृष्ण भावना में, आप इतने साल कृष्ण भावना में रहे हैं, क्योंकि मेंटली बहुत सारे साधन होते हैं, हमें मालूम होते हैं कि नहीं भक्तों के साथ नम्र रहना चाहिए शास्त्रों के आधार पर, लेकिन एक साक्षात्कार के स्तर पर या एक साधारण कृष्ण भावना भावित साधक को ये कैसे रहना चाहिए, भक्तों के संग में बहुत महत्वपूर्ण है।
मैं बहुत सालों से भक्तों के संग में तो रहा हूँ, पर अभी तक भक्तों के संग में कृष्ण भावना में नहीं रहा हूँ, तो इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता इसके बारे में। कृष्ण भावना में अभी तक मुझे होना है, पर अगर हम देखते हैं प्रभुपाद जी लिखते हैं सातवें स्कंद के एक तात्पर्य में कि वॉट एवर यू डू मटेरियल एग्जिस्टेंस मिजरेबल, आप कुछ भी करो भौतिक जगत ये दुखदायक ही है, बट मटेरियल एग्जिस्टेंस इन द एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज इज फार मोर मिजरेबल देन मटेरियल एग्जिस्टेंस इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो आप भक्तों के संग में हो, अभक्तों के संग में हो, जो त्रिविध ताप तो आने ही वाले हैं, पर अभक्तों के संग में हो गए तो वो बहुत ज़्यादा आते हैं तुलना में। तो इसीलिए अगर हम जब अभक्तों में पहले रह रहे थे तो उस प्रकार के जो उस समय जो लोग हमारे साथ थे वो स्मरण करेंगे, और अभी जिस प्रकार के लोग हमारे साथ है सर्टनली बाय एनी स्टैंडर्ड किसी भी स्टार से भक्त बहुत बहुत अच्छे हैं उसकी तुलना में। पर क्या होता है, हमारा मन दोष देखने में बड़ा सक्षम रहता है। तो मैंने कविता लिखी थी, उसमें लिखा था सेमी ओ लॉर्ड फ्रॉम माई डेविलिश माइंड फॉल्स विद एवरीवन एक्सेप्ट इटसेल्फ डज इट कॉन्स्टेंटली फाइंड। Save me, O Lord, from my devilish mind. हे भगवान, मुझे आसुरी मन से बचाओ। क्यों? Faults with everyone except itself. Does it constantly find? क्या? खुद को छोड़ के सब में हम दोष देखते हैं। तो ये मन का स्वभाव है। So the best way to solve the problem, best जो मैं practically apply करता हूँ कि हम सब वास्तव में बीमार हैं। और प्रभुपाद जी ने इस कौन शुरू किया है, ये एक अस्पताल है। तो मुझे एक प्रकार की बीमारी है, आपको एक प्रकार की बीमारी, सब बीमार है। और यहाँ पे हम आए किस लिए है, कि हम ठीक होने के लिए आए हैं। ये देखने के लिए नहीं कर तुमको क्या बीमारी है, वो हमारा बिजनेस नहीं है। वो जिसकी भी जो बीमारी है वो डॉक्टर उसको हल करेंगे, और हमारी बीमारियाँ डॉक्टर हमें हल करेंगे। तो अगर हम दूसरों की बीमारी पर चिंतन करेंगे तो क्या होगा, वो बीमारी भी हमको आ जाएगी। इट्स क्वाइट पॉसिबल। क्या है, जो अनर्थाज है, कोई भी अनर्थ है, वो हाईली कंटेजियस होते हैं, वो स्प्रेड होते हैं। तो अगर हम याद रखते हैं कि हाँ मैं भी बीमार हूँ, दूसरे बीमार है, ये मुझे एक प्रकार की बीमारी होगी, दूसरे को दूसरे प्रकार की बीमारी होगी, तो फिर हम सबको एक दूसरे को सहन करना है, और सहन करते हुए भक्ति करनी है। तो यस, मतभेद अनअवॉइडेबल है, वो हो गया ही, पर अबाव ऑल आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज आवर कॉमनैलिटी ऑफ पर्पस। सारे जो मतभेद है उनसे ऊपर है कि हमारा पर्पस, हमारा उद्देश्य क्या है, हमें कृष्ण भावनावित होना है, हमें अनर्थों से मुक्त होना है। वह उद्देश्य रखेंगे हम हमारे मन में क्लियर, तो फिर ये जो मतभेद है वो इतने महत्वपूर्ण नहीं होंगे। पर अगर वो हम उद्देश्य भूल जाते हैं, अगर हमारा उद्देश्य होगा कि आई वॉन्ट टू लिव कंफर्टेबली इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, मुझे बड़े कंफर्ट क्या सुख सुविधा के साथ भक्तों के संग में रहना है। सो इफ कंफर्ट बिकम्स आवर गोल, अगर सुख सुविधा हमारा ध्येय बन जाएगा तो हम भक्तों के संग में सुखी नहीं रहेंगे। पर कृष्ण हमारा ध्येय रहेगा तो फिर भक्तों के संग के जैसे कोई और संग नहीं है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि दूसरे भक्तों के माध्यम से भगवान हमें शुद्ध करते हैं। तो वो भक्त भले अनजाने से या अनजाने से कुछ कार्य करते हैं जिससे हमें दुख होता है या कुछ मतभेद होता है, तो वो वास्तव में भगवान की योजना है जिससे कि हम शुद्ध हों। सो इट इज़ बेटर टू बी प्योरीफाइड बाय डिवोटीज देन टू बी प्योरीफाइड बाय नॉन डिवोटीज। प्योरीफाई तो हमें होना ही है, तो भक्तों के द्वारा प्योरीफाई होना बहुत आसान है, अब भक्तों के द्वारा प्योरीफाई होना बड़ा बड़ा मुश्किल है। मैं अभी एक लेख लिख रहा हूँ, तो उसमें जो कॉरपोरेट कल्चर है क्या है, द बॉस इज ऑलवेज राइट एस्पेशली व्हेन ही इज रॉन्ग। तो यू हैव टू सबमिट टू समवन। ये मैं जोक नहीं बना रहा हूँ, ये ऑफिस में ऐसा स्लोगन मैंने पढ़ा था, फिर उस पर आर्टिकल लिखने वाला हूँ अभी। तो एक्चुअली लोग ऐसे होते हैं कि मैं तुम्हारे मत की परवाह ही नहीं करता हूँ, माई वे और द हाई वे, मेरा मस्त मानो या फिर
रास्ते पे चले जाओ, आपको दफा कर देता हूँ मैं।
सो डिवोटीज तो कम से कम उतना तो नहीं करते, दैट्स व्हाई इट्स मच लेसर इविल। सो थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। गौर प्रेमानंद।
इस गृह चैतन्य चरण प्रभु की।